नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी, मतगणना शाम को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की, कहा इस दुखद घड़ी में केंद्र प्रभावित लोगों के साथ है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटने के बावजूद नेपाल में व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज शाम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई और शांति की अपील की। विदेश मंत्रालय ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी। इजरायली सेना ने गाजा शहर को तुरंत खाली करने का आदेश जारी किया। और 17वां एशिया कप 2025 आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में शुरू होगा। पहले मैच में अफगानिस्तान का सामना हांगकांग से होगा। अब समाचार विस्तार से। नए संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए सहयोगियों ने विश्वास व्यक्त किया है कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होंगे। केंद्र मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन भारी मतों से चुनाव जीतेंगे।
जो मुझे लगता है कि अंतरात्मा से मतदान करने के बाद भी ये अवश्यंभावी है कि एनडीए के कैंडिडेट के रूप में सीपी राधाकृष्णन जी एक बड़े अंतर के साथ में विजयी होंगे। एनडीए के कैंडिडेट के नाते सीपी राधाकृष्णन साहब की विजय उतनी ही सुनिश्चित है जितनी कल का सूर्योदय पूर्व से होना है।
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और उसके सांसद अपने उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के समर्थन में खड़े हैं, जो बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बहुत विनम्र है और उनका जीवन उपलब्धियों से भरा हुआ है और वह भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि विपक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा की। उन्होंने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को हर संभव सहायता देने की केंद्र सरकार की वचनबद्धता दोहराई है। हिमाचल प्रदेश में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण हुई बर्बादी का मूल्यांकन किया। उन्होंने पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम सामान्यतः साफ रहा। भारी बारिश का दौर थमने के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। इस मॉनसून के मौसम में 370 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 41 अन्य अभी भी लापता है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। एक रिपोर्ट।
इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री राज्य सरकार के साथ कांगड़ा में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इस बैठक में राज्य सरकार की तरफ से आपदा को लेकर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन दी जाएगी, ताकि प्रदेश को आपदा राहत पैकेज मिल सके। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश धीरे धीरे कम हो रही है और आने वाले कुछ दिनों में शुष्क मौसम रहने की संभावना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जुनामणि ने कहा है कि इस महीने की 11 तारीख से उत्तर पश्चिमी भारत में मूसलाधार बारिश की संभावना है।
कि उत्तर पश्चिम भारत में कोई ऐसे हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है और राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो आसमान मुख्यतः साफ है और कुछ क्लाउड भर आया है, बट ऐसे कोई हमारा ना पश्चिम हिमालय का क्षेत्र ना राजस्थान पंजाब हरियाणा कहीं भी हैवी रेनफॉल का वार्निंग नहीं है।
नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाल के प्रतिबंध के विरोध को देखते हुए आज शाम एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। एक संदेश में श्री ओली ने कहा है कि वह स्थिति का आकलन करने और एक सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से इस कठिन समय में शांति बनाए रखने की अपील की। सर्वदलीय बैठक आज शाम 6 बजे होने वाली है। अधिक जानकारी काठमांडू में मौजूद हमारे संवाददाता श्वेता सिंह से।
कनकलता, देखिए यहाँ नेपाल में कर्फ्यू को नजरअंदाज करते हुए आज भी न्यू बानेश्वर और कलंकी चौक में सुबह से युवाओं ने प्रदर्शन किया है और वहाँ मामला काफी गंभीर हो गया था और काठमांडू और अन्य जगहों पर कई राजनीतिक दलों के नेताओं के घरों में आगजनी हुई है, पत्थर फेंके गए हैं। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जितनी भी जहाजें उड़ान लेने वाली थी उनको फिलहाल रोक दिया गया है। और देखिए आज 6 बजे शाम को प्रधानमंत्री ओली ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया है। अभी तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है और होटल हिल्टन जो है उसमें भी आगजनी की खबर आ चुकी है। जी कनकलता।
विदेश मंत्रालय ने नेपाल में विरोध प्रदर्शन के बीच वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को नेपाली अधिकारियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। मंत्रालय ने बताया है कि भारत नेपाल के घटनाक्रमों पर नजर रखे हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा बलों को शक्ति का प्रयोग करने पर बुनियादी सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि वो नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ निगरानी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि अधिकारियों के लिए शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम भारत की 8 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंच चुके हैं। वर्तमान कार्यकाल में भारत की उनकी ये पहली यात्रा है। इससे पहले डॉक्टर राम गुलाम नई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। एक रिपोर्ट।
इस यात्रा के दौरान डॉक्टर राम गुलाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वे रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री वाराणसी, अयोध्या और तिरुपति भी जाएंगे। वे मुंबई में एक व्यापार कार्यक्रम में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और मॉरिशस के बीच घनिष्ठ और विशेष संबंध है। ये संबंध साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के बीच आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के मुख्य समुद्री पड़ोसी के रूप में मॉरिशस भारत के महासागर दृष्टिकोण अर्थात पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति और पड़ोसी प्रथम नीति में विशेष स्थान रखता है। मॉरिशस ग्लोबल साउथ में एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सैटेलाइट 2400 घंटे सक्रिय थे और सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे थे। श्री नारायण ने यह भी कहा है कि इसरो स्थानीयकरण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा दे रहा है, वही अंतरिक्ष उद्यमिता को भी प्रोत्साहित कर रहा है ताकि देश को वैश्विक अंतरिक्ष नेतृत्व की दिशा में अग्रसर किया जा सके। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारत की सशस्त्र सेनाएं स्वदेशी रक्षा उत्पादन, निर्यात और नवाचार के माध्यम से विकास को गति दे रही है, साथ ही सुरक्षा और राष्ट्र आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रही है। इजरायली सेना ने गाजा शहर में सभी निवासियों को तुरंत चले जाने का आदेश दिया है क्योंकि वह इस क्षेत्र में अत्यधिक बल के साथ कार्रवाई करने की योजना बना रही है। IEDF इजरायल रक्षा बल ने अरबी भाषा के प्रवक्ता ने गाजा शहर में सभी इलाकों में मौजूद लोगों से मानवीय क्षेत्र में स्थानांतरित होने का आग्रह किया है। ये घटनाक्रम इजरायल के सुरक्षा मंत्रिमंडल द्वारा पिछले महीने इस क्षेत्र के सबसे अधिक आबादी वाले शहर पर नियंत्रण करने की एक विवादास्पद योजना पर लिए गए निर्णय के बाद आया है। केरल में राज्य स्तरीय ओणम समारोह आज शाम संपन्न होंगे। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर शाम 4:30 बजे से ओणम के समापन पर आयोजित सांस्कृतिक रैली के लिए रवाना हुए हैं। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 230 अंक बढ़कर 81,117 और निफ्टी 98 अंक बढ़कर 24,871 पर पहुंच गया। और 17वीं एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 आज शाम संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में शुरू होगी। ये इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। प्रतियोगिता का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच आज रात 8 बजे खेला जाएगा। भारत अपना पहला मैच कल संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ खेलेगा। वहीं 14 सितंबर को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये टूर्नामेंट इस बार T20 प्रारूप में खेला जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।